الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مریم آیت نمبر 35 سے 65 تک کریں گے. دیکھیں گے انشاءاللہ اپنے اس سبق میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد 6 انبیاء کرام کا ذکر ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو انبیاء کے بعد آئے لیکن انہوں نے نہ دین کی حفاظت کی، نہ انہوں نے کوئی صحیح چال چلن رکھا، نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، ان کا کیا انجام ہوگا وہ ہوگا. تو اس سے پہلے ہم دو پیغمبروں کی موجزانہ پیدائش کا ذکر پڑھ چکے ہیں، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اب ان کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دونوں نے کہا کہ ہم اپنے والدین، عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ کا کہا اور یحییٰ علیہ السلام نے والدین کا فرمایا کہ ان کے ساتھ ہم بہت اچھے برتاؤ کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے ہیں، اور دونوں نے کہا کہ ہم بدبخت نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا، وہ بدبختی سے بچ جاتا ہے، خوشبخت ہو جاتا ہے، سرکشی سے بچ جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، وہ نیکی اور خوشبختی والا ہو جاتا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی بڑی چیز ہے، اور اگر ان سے تعلقات خراب ہو جائیں تو آپ دیکھ لیں گے، خود ہی دیکھ لیں، اندر سے سکون ہی چلا جاتا ہے انسان کا، اندر بے چینی ہونے لگتی ہے. اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ جس دن وہ اٹھیں گے، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے، جس دن وہ فوت ہوں گے، جس دن پیدا ہوئے، جس دن اٹھیں گے اور فوت ہونے کے بارے میں، تینوں ان کے جو سخت ترین ٹائم ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اپنے اوپر سلامتی بھیجی ہے. اس سے یہ بھی رد ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، تو وہ تو سلامتی نہیں ہے. سولی پہ چڑھایا جانا تو ایک مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ایک رسوائی کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہوا بلکہ ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے لیے تو سلامتی ہی سلامتی ہے. اور جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی سلامتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بدکاری سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک وہ سلامتی کی بات تو نہیں ہے نا، بدکاری. اور یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامن تھا اور ان کے لیے السلام والسلام ہے، تو دونوں کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. بس یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا سلام، اور جب سلام من کہا تو پھر اس کے اندر بہت کشادہ ہو جاتا ہے معنی، اور السلام میں خاص عیسیٰ علیہ السلام کا تو تھوڑا سا فرق ہو گیا، یہ انہوں نے اپنے اوپر بھیجا ہے تو تھوڑا الفاظ کا فرق پتہ چل رہا ہے. اور یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اس یہی آیات حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں جب پڑھی تھی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا تھا زمین سے، اور اس نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے اتنا سا بھی زیادہ نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں آخری آیت جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی کی تھی، ذالک لفظ آیا، ذالک اشارہ بعید ہے، اسم اشارہ بعید. بعید دو طرح سے ہوتا ہے، ایک فاصلے کے اعتبار سے بھی بعید ہوتا ہے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی، یعنی بہت بلند اوپر. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ذالک عیسیٰ ابن مریم، ان جو یہ باتیں کرتے نا اس سے وہ بہت بلند ہیں، اس سے وہ بہت دور ہیں. تو ذالک کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے جو بھی انہوں نے بہتان باندھے ہیں ان سے ان کی شان بہت اوپر ہے. اب تھوڑی سی باتیں اس کے اوپر ہوں گی، انہی کے جو عقائد ہیں ان کا رد کیا گیا، اور اس کے بعد ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للہ، नहीं है अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह ताला के लायक नहीं है अय्यत्तखज़ मिन वलद के वो बना ले अपने लिए बेटा। अल्लाह ताला को तो ये जेब नहीं देता, उसके लायक नहीं है। क्यों? इसलिए कि सुबहाना वो पाक है। सुबहान का लफ्ज मैंने आपको कई दफा इसका माना बताया है कि हर इम्परफेक्शन से पाक, हर ऐब और नक्स से पाक। ऐब का मतलब क्या होता है? खराबी। नक्स का मतलब क्या होता है? कमी। यानी हर खराबी से और हर कमी से पाक है। और ये मतलब नहीं कि पहले को खराबी थी तो उससे पाक कर दिया गया, ये नहीं मतलब है। मतलब ये है कि यानी वो अबव है इससे, उसमें कोई कमी है ही नहीं और उसमें कोई मोहताजी है ही नहीं। जो मोहताजी है ना वो भी कमी है, इसीलिए तो हम अपने लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना करना, क्योंकि मोहताजी भी एक खराबी है, एक कमी है, एक फ्लॉ है, एक वीकनेस है, और अल्लाह ताला वीकनेस से पाक है। ठीक है, वो इस हर किस्म की कमजोरी से पाक है, हर किस्म के ऐब से पाक है, हर किस्म की कमी से पाक है। और औलाद की मोहताजी होना, औलाद का मोहताज होना भी एक कमी है। हम औलाद के लिए दुआएं करते हैं, इसलिए मतलब है हमें औलाद की जरूरत होती है, एहतियाज होती है। तो जब कोई चीज जरूरत है ना तो इसका मतलब वो इंसान की मोहताजी है। अब अल्लाह ताला हर जरूरत से पाक है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। जब कोई उसकी औलाद बताता है तो यानी उसके अंदर मोहताजी बता देता है, और मोहताजी तो बहुत ही बुरी चीज है। हम अपने लिए मोहताजी नहीं चाहते, अल्लाह ताला के लिए कहते हैं कि वो मोहताज है, अस्तगफिरुल्लाह। तो वो तो सुबहान है, वो तो पाक है इन चीजों से। और इसीलिए किसी इंसान का नाम सुबहान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी इंसान को जेब नहीं देता कि वो हर कमी से पाक है। कोई इंसान हो ही नहीं सकता। हर मोहताजी से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर तरह की फ्लॉस से पाक है, हर तरह की खराबी से पाक है। तो ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। और तमाम कमालात उसके अंदर है, तो फिर उसका बेटा कैसे हो सकता है? बल्कि वो तो कैसा है, उसको क्या जरूरत है? अगर उसने बेटा ही रखना होता तो उसको इंसानों की जरूरत ही थी क्या? इतनी हकीर सी मखलूक है जो, और उसमें भी फिर क्या हजरत मरियम की जरूरत थी? अस्तगफिरुल्लाह। उसने बेटा पैदा करना कुन से पैदा कर सकता था। इजा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहु कुन फयकून। उसने तो जब किसी काम का इरादा कर लेना तो वो बस कहता है कुन, हो जा, बस वो हो जाता है। अब मैं आपको पहले भी कई दफा ये बात बता चुकी हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला हर वक्त कुन कहता है, हो जा हो जा हो जा, ये चीजें जब वो इरादा करता है। बल्कि इंसान की जो सबसे उसको जल्दी किसी बात को होने का समझ आता है ना, कि कोई बात बहुत जल्दी से हो गई तो हम सोचते हैं मैंने कहा हो जा बस वो हो गया, यानी बहुत जल्दी का हमारे दिमाग के अंदर ये फास्टेस्ट यही चीज है कि कोई हो जा कह दे और वो चीज हो जाए ना। तो ये इससे ज्यादा बढ़ के हमें कुछ बात समझ ही नहीं आ सकती, इसलिए ये कहा गया। ठीक है, वरना वो तो इरादा फरमाता है और वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह ताला के तो लायक ही नहीं है, सूट ही नहीं करता कि वो औलाद बनाए। तो ये कितनी बुरी बात है जो ये करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो परफेक्ट है, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस है उसकी जात। ठीक है, इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू, और बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो उसकी इबादत करो। तो कहते हैं ये बात ईसा अलैहि सलाम ने कही, या आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम से कलाम किया जा रहा कि आप ये कहें कि मेरा और तुम्हारा रब तो अल्लाह है, तो उसी की इबादत करो। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। यानी ये है नचोड़ पूरे दीन का कि मेरा रब अल्लाह है। रब कौन होता है? अब तक तो आपको ये सारी डेफिनेशंस अजबर याद होनी चाहिए। कभी भी आपसे कोई पूछे रब का मतलब क्या है तो आपको पता होना चाहिए। अब आप ये ना कहें पालने वाला, मैंने आपको इससे ज्यादा का बताया। असल में पालने वाला इसलिए मतलब लिख दिया जाता है क्योंकि ये ही एक लफ्ज ही है जिससे कि हम जिसमें बहुत सारे माने आ जाते हैं। जैसे आपको कहा जाए आप अपने बच्चों को पालती हैं, या फलां का बच्चा फलाने पाला, पाला का मतलब क्या होता है? हाँ, पाला का मतलब होता है यानी उसकी केयर भी की, उसको खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, उसको हर तरह से उसकी हिफाजत की, हर तरफ से हिफाजत की, उसकी टेक केयर की, उसको मतलब हर चीजों से नुकसान से बचा के रखा, सब चीजें आ जाती है ना पालने में। पालने का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला दिया, वो बीमार पड़ा तो उसको देखा ही नहीं। पालने का मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा बस उसको नहला धुला दिया और वैसे उसको सर्दी में छोड़ दिया और उसको कुछ पहनने को नहीं दिया। पालने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई उसकी किसी तरह से भी हिफाजत ही नहीं की, वो जिस मर्जी शर में पड़ जाए। पालने में तो सब चीजें ही आ जाती है ना। तो अल्लाह ताला जब पालने वाला है ना, तो वो सब नीड्स की, इंसान की हर तरह की नीड्स की टेक केयर करने वाला है, वो उसको देखने वाला है, वो उसको खिलाता भी है, रिस्क भी देता है, पिलाता भी है, हिफाजत भी करता है, उसको पालता बड़ा करता है, यानी इस एक लफ्ज में, और उसका पैदा करने वाला, ये भी इसके अंदर है। इंसान पालने का आता है तो वो उसके अंदर पैदा करने का माना नहीं होता, लेकिन रब के अंदर पैदा करने का भी माना है। वो पैदा करके फेंक नहीं दिया उसने, सिर्फ इंसानों को, सबको पैदा करने के बाद उनकी सारी जरूरियात को पूरा करना, हर किस्म की, हर तरह से, और उनको परवान चढ़ाया, ये सब माना रब के अंदर आता है। देखिए, टू लेटर का वर्ड है, लेकिन इसमें एक पूरी दुनिया है कि हम अपना वजूद देख लें तो सर से पैर तक हमारा वजूद जो है ना, उस रब का मोहताज और एहसान मंद है कि जहां तक हम पहुंचे हैं वो उसके पालने की वजह से पहुंचे हैं। ठीक है, तो हम मकरूज हैं उसके, हम उसके हम ओ करते हैं उसको अपनी लाइफ। ठीक है, तो इसलिए फाबुदू, उन्होंने ये नहीं फरमाया मेरा बाप अल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा रब है अल्लाह और तुम्हारा भी रब है अल्लाह। तो इबादत तो फिर उसी की करनी चाहिए ना, जिसका इतना एहसान है, जिसने पैदा भी किया पाला भी है, तो फिर उसकी इबादत करनी चाहिए। इसलिए कि सब चीज मेरे पास जो दी हुई है वो फिर उसकी ही है, यहां तक मैं पहुंचा हूं उसकी वजह से। तो अल्लाह ताला के एहसानात का जब शऊर आता है ना, तो इंसान के अंदर शुक्रगुजारी आती, तभी वो इबादत भी कर सकता है अल्लाह ताला की। लेकिन आज क्या बात है इंसानों के लिए, क्यों ये बात इतनी समझनी मुश्किल है कि फाबुदूहू, उसकी ही इबादत करो। ये इतने जो लेक्चर्स देने पड़ते हैं अकीदे के ऊपर, तौहीद के ऊपर, ये इसलिए कि आज मुसलमानों को ये बात ही नहीं समझ आती कि सिर्फ उसकी इबादत करनी। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। सिरात मुस्तकीम जो मांगते हो ना, इदिन सिरात मुस्तकीम, तो ये है कि एक अल्लाह की इबादत करो, वो तुम्हारा रब है। रब मानो तो सही, आप मानते हैं कि वो ही खिलाने वाला है। अच्छा, वो ही खिलाने पिलाने वाला है, रिस्क देने वाला है, प्रोटेक्शन वाला है, मेरी सारी जरूरियात पूरी करने वाला है, मुझे पालने वाला, तो फिर किसी और के पास क्यों जाते हो, फिर किसी और के पास चढ़ावे क्यों चढ़ाते हो, फिर किसी और के आगे क्यों झुकते हो, फिर उसी की इबादत करो, यही है सीधा रास्ता। फख्तलफ अल अहजाब मिन बैनिहिम, तो इख्तलाफ किया ग्रोहों ने आपस में, यानी ग्रोहों ने इख्तलाफ किया, जब लोग सिरात मुस्तकीम से हट गए ना, ये एक खुदा को मानने से हट गए, फिर तो लेकिन जो गुमराही है ना, उसका एक रास्ता नहीं है, अंधेरा एक नहीं है, अंधेरे जुलुमात है, नूर एक है, नूर की नहीं है। और सिराते मुस्तकीम भी देखिए, सिरात जो है ना, इसकी जमा नहीं है, इसकी जमा नहीं है, सिरात ही है बस। इसका मतलब है ये एक ही रास्ता है। ये जो कहते हैं ना, गलत कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, सारे ही है, खुदा कोई मानते हैं ठीक है, वो कोई उसका तरीका है, कोई उसका तरीका है, उनको भी गलत ना करें, वो तो पत्थरों को बना के, असल मांग वो भी खुदा से ही रहे हैं। आप कभी किसी से मांग लें, उससे मांग लें, उस कोई दुनिया से चले गए उनसे मांग लें, या किसी से भी मांग लें, असल तो सारे अल्लाह से ही मांगते हैं, और सारों का वो असल तो एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप सिरात को देखें तो वो सिरात एक है, वो बहुत सारे नहीं। किसी ने मुझे एग्जाम्पल दी कन्विंस करने के लिए, उन्होंने, मैं तो हैरान हूँ कैसी कैसी लोगों ने एग्जाम्पल्स बनाई हैं। उन्होंने कहा देखें जी, आपने पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, तो वो पहाड़ की चोटी तो एक है ना, कोई राइट से चढ़ रहा है, कोई लेफ्ट से चढ़ रहा है, कोई आगे से, कोई पीछे से, हर तरफ से लोग चढ़े, जा तो एक को ही रहे। देखो कैसी इन्होंने मंतक बनाई। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सिरात से हट गया ना, सिराते मुस्तकीम से, तो फिर इतने रास्ते हैं, क्योंकि गुमराही कोई एक थोड़ी है। एग्जिट ले लिया आपने तो फिर तो बहुत सारी, आप देखें हाईवे एक है, उसके ऊपर जब तक आप जा रहे हैं एक सीधी सड़क पे चल रहा, जब आपने एग्जिट ले लिया तो कोई सड़क दाएं को जा रही, कोई बाएं को जा रही, कोई सीधी जा रही आगे, कोई इधर जा रही, बहुत सारे रास्ते हैं फिर तो गुमराहियां तो बहुत सारी हैं। को किसी ने बुतों को बनाया हुआ है, किसी ने नबियों को बनाया हुआ है खुदा, किसी ने फौथिगान को खुदा बना लिया, किसी ने सूरज को पूजना शुरू कर दी, किसी ने चांद को पूज, फिर तो इतने रास्ते हैं कि इंसान देख ले आप, इन्होंने कितने कितने सारे खुदा बनाए हुए हैं, पता नहीं लाखों खुदा है इनके, इनको हिंदू लोग पूजते हैं। तो फख्तलत फल अजाब उम्मीम बैनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो लोगों ने बहुत इख्तलाफ कर दिया, और खास तौर पे यहाँ पे यहूद नसारा की बात है कि फिर नसारा ने भी इख्तलाफ कर दिया, उन्होंने तो खुदा का बेटा ही बना दिया, यहूदियों ने इख्तलाफ कर दिया, उन्होंने वलदुज़्ज़िना कह दिया। फिर नसारा के अंदर भी तो कोई एक एक अकीदा थोड़ी है, इनके अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं लकद कफर अल्लदीना कालू इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह मसीह इब्न मरियम है। फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया लकद कर फल लजीने कालू इन अल्लाह सालिसु सलासा, कि वो तीन में तीसरा है, ट्रिनिटी का जो अकीदा है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते कालत इन नसार अल मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है, और यहूद ने कहा उजैर अल्लाह का बेटा। यानी आप देखिए किसी एक चीज पे तो नहीं रुके, किसने कहा वो खुदा ही है, खुदा ही उतर के मसीह की शक्ल के अंदर दुनिया में आ गया, तो खुदा वो वही खुदा है, वो पहले आसमान पे था, वो जमीन पे तो उतर आया और उसने मसीह की फॉर्म इख्तियार कर ली। दूसरों ने कहा नहीं बेटा है, तीसरों ने कहा कि नहीं वो एक माँ है, एक बेटा है और एक वो बड़ा बाप है, इस तरह से कह दिया। मतलब कहीं तो रुको, ये इतने ग्रो ग्रो हो गए, और वाकई सिराते मुस्तकीम से हट जाए तो चाहे मुसलमान हटे चाहे कोई भी हटे, फिर तो कोई हद ही नहीं है। आज देखे मुसलमानों के इतने फिरके क्यों हो गए, सिराते मुस्तकीम से हट गए, हर एक ने अपनी अपनी कोई अकीदे बना लिए। फवैलुल लिल्लदीन कफरू, तो वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया। इसका मतलब ये सब कुफर है, जो खुदा कहे, खुदा का बेटा कहे, तीन में तीसरा कहे, जो भी कहे वो सब कुफर है, कुफर है, हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया। में मशहदी हाजरी से, हाजरी के दिन जो बड़ा दिन होगा उस दिन की हाजरी से के पे उनकी हलाकत है, यानी उनका बहुत बुरा अंजाम होगा जिस दिन हाजरी होगी बड़े दिन की। और अल्लाह ताला ने इसको यौमुन आदीम फरमाया है कि बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। इससे पता चलता है हमें कि वो दिन उसकी हैबत, उसके उसमें जो उसका उसकी लेंथ है वो भी बड़ी होगी, उसके अंदर जो भी काम होंगे वो बहुत बड़े बड़े काम होंगे उस दिन। जाहिर है लोगों की तकदीरों के फैसले हो रहे हैं, अब आगे उन्होंने हमेशा के लिए किधर रहना है वो फैसले किए जा रहे हैं, तो ये तो कोई छोटी बात नहीं है ना। तो उनके लिए तो हलाकत है उस दिन, कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ के लिए हलाकत होगी, तो उस बड़े दिन की हाजिरी पे उनके लिए हलाकत है, जो कि इस तरह से ग्रो ग्रो बन गए और उन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने अकीदे बना दिए। अस्मिया और अबसिर, ये दो कलिमात जो है ना, ऐसे तो अमर है लेकिन ताज्जुब के कलिमात यहाँ पे आए हैं कि बड़े अच्छे देखने वाले हो गए, बड़े अच्छे सुनने वाले हो गए इनमें, ये यानी ये लोग उस दिन का बताया जा रहा है कि वो अब बड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है और बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। यौमा अतूना ना, जिस दिन वो आएंगे हमारे पास उस दिन तो बड़ा सब सुन भी, आज बताएंगे ना तो कहेंगे हमें तो नहीं समझ आ रही, हमें तो नहीं ये बात पल्ले पड़ रही, आज ना सुनने को तैयार है, ना समझने को तैयार है, ना कुछ देखने को तैयार है, लेकिन एक दिन आगे बड़ा अच्छा समझ आएगा। अब समझ तो फिरौन को भी उस दिन आ जानी है, हर एक को समझ आ जानी है, जो दुनिया में आज आंखें बंद किए हुए ना, हम सभी किसको क्या कहना, हम सभी आंखें बंद करके दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि ये हम आंखें आज ना खोली तो कल तो खुल ही जानी है, जब हकीकत सामने आएगी तो खुल ही जानी है, लेकिन आज जो सोए में हम और बहरे हुए में हम, सुनना ही नहीं चाहते ना देखना चाहते, लेकिन जो आज सो सो के गुजार देगा ना और आज बहरा हो के गुजार देगा, अंधा बन के गुजरेगा इस दुनिया में, तो फिर वो कयामत के दिन अंधा ही उठेगा। तो उस दिन बड़े सब इनको बातें समझ आ जानी है, वो जो आज समझ नहीं आ रही, आज अकल बंद की हुई है, बड़ी अच्छी समझ आएंगी जब हमारे पास आ जाएंगे। तो उस समझ का कोई फायदा फिर होगा? उस सुनने का देखने का कोई फायदा होगा? नहीं। आज फायदा है अगर सुन ले, आज फायदा है अगर देख ले, आंखें बंद करके ना जिंदगी गुजारे, अंधे होके मत गुजारे, तब क्या गुजरेगी जब वहां पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं हम चल सकते, हमेशा ऐसे आंखें बंद किए नहीं रह सकते, एक दिन तो खुलनी ही है ना, तो क्यों ना आज खोल लें। आज लेकिन जालिम क्या है, खुली गुमराही, आज नहीं समझ आ रही इनको, उस दिन अच्छा देखेंगे अच्छा सुनेंगे, लेकिन आज अगर इनको देखा जाए तो बहुत और कुछ चीजें हैं जो देखने की हैं, और कुछ चीजें हैं जो सुनने की हैं। इन बातों को कौन सुने, इन पे कौन कान धरे, इनको तो फजूल ही समझते हैं, इनकी क्या जरूरत है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो यहाँ पे लेकिन लेकिन नहीं कहा गया, बल्कि लेकिन ये ज़ालिमूना, हालांकि यहाँ पे लेकिन भी कहा जा सकता, लेकिन जालिम का लफ्ज ला के एम्फोसाइज किया गया, ताकीद के साथ बताया गया कि जालिमों को, उनको हाईलाइट किया गया कि जालिमों का तो फिर ये अंजाम हुआ, ये उस दिन वहां पे ऐसे ऐसे देखेंगे, आज ये गुमराही में पड़े। कुरान पाक में आता ना, वला तरकनू इल्लल्लदीन ज़लमू फतमस्सकुन्नार, मत झुको उनके उनकी तरफ जो जालिम है, तुमको आग छू जाएगी। जब ये बात मुवफ़िक़ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने नमाज में ये आयत पढ़ी तो बेहोश होके गिर पड़े। बाद में किसी ने पूछा, आप क्यों बेहोश हो गए ये आयत पढ़ के? तो कहने लगे कि जब जालिम की तरफ झुकने के ऊपर इतनी बड़ी सजा है कि आग छू लेगी, तो जो जुल्म करने वाला है उसकी सजा कितनी बड़ी होगी। तो यहाँ पे बताया गया कि जालिम लोगों का उस दिन बड़ा अच्छा नजर आएगा। आप जालिम, उन्होंने जुल्म क्या किया, जुल्म सबसे बड़ा जुल्म तो शिर्क ही है, उसके बाद तो सारे गुनाह ही जुल्म है। तो आज इंजॉय कर रहे हैं, आज यहाँ पे बेफिक्रे हुए बैठे हैं, आज यहाँ पे बिल्कुल इस चीज से अपने आप को मुंह मोड़े में मजे कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आंखें खुलेंगी। ऐसे ही है जैसे कोई इंसान गलत ट्रेन पे बैठ जाए और रास्ते में बड़ा सीनरीज एंजॉय कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा ये सफर कितना अच्छा मजे का हो रहा है, जब ट्रेन जाके रुके मंजिल पे, तो तब उसको पता चले, हाय ये तो मैं किसी और जगह आ गया, तब उसको समझ आएगी कि मैंने तो थ्रू आउट ही गलत ट्रेन ली हुई थी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट से ही मेरी ट्रेन ही गलत थी। लेकिन रियलाइज कब हुआ, अब जब प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया तब समझ आई कि ओहो ये मैं किस ट्रेन में बैठ गया, ये हालत इनकी है, शुरू दिन से गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अब जिंदगी में मजे कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा ऐसे हुआ, बड़ा फन हो रहा है बड़ा, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचेंगे तो तब पता चलेगा। वह अंदिर हम यौमल हसरती, ए नबी इनको डरा दे हसरत के दिन से, हसरत का दिन, कयामत का एक नाम यौमुल हसरा भी है, जैसे यौमुल आजिफा, यौमुल तगाबुन, यौमुल रजफा, इसी तरह यौमुल हसरा भी है। जिंदगी में बहुत सारे इंसान की जिंदगी में दिन आते हैं ना, जिसको हम जैसे कहते हैं वेडिंग डे है, एनिवर्सरी डे है, बर्थडे है, मदर्स डे है, फादर डे है, कभी आपने इस डे का भी सुना, रिमोर्स डे, हसरत का दिन, जब इंसान हसरतें करेगा, किस चीज पे हसरत होगी, ईमान ले आते, काश ईमान ले आते। लेकिन आपको पता है यहाँ पे तो कहा गया कि उन लोगों की खास तौर पे हसरत का है जो कुफर कर रहे हैं या जो जहन्नुम में चले गए। लेकिन आपको पता है हसरत सिर्फ उनको नहीं होगी जो जहन्नुम में चले, आपको हैरत होगी कि जन्नत में जाने वालों को भी हसरत हो रही होगी, उनको भी अफसोस हो रहा होगा। अफसोस किस बात का, किस बात की हसरत कि अगर हमें पता चल जाता ना कि नेकियों के ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब और अजर मिलने हैं और एक एक नेकी पे इतने इतने दर्जे ऊंचे हो जाने हैं, तो मैं और जरा कर लेती नेकियां, मेरे पास तो काफी टाइम था उस वक्त, लगेगा बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत टाइम था। मैं वो हसरत होगी उस हर मोमेंट पे, हर मोमेंट पे जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की इताअत से हटे रहे, उस पे हसरत होगी क्यों मैंने ऐसा कर दिया। उस वक्त भी कोई अच्छा काम कर लेती, कोई नेकी कर लेती, आई विश आई डिड बेटर, आई विश, कितना रिग्रेट होगा ना, आई विश। लेकिन पता है हसरत किस पे होती है, हमेशा हसरत उस पे नहीं होती कि जो चीज इंसान कर ही नहीं सकता तो फिर हसरत हो, हाय मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो फिर उसकी अकल उसको कहती है कि कर भी कैसे सकते थे। मसलन है कि एक इंसान जो खड़ा होके नहीं नमाज पढ़ सकता, उसके पास टांगे ही नहीं है, तो अब उस वो हसरत नहीं करेगा कि काश मैं खड़ा होके पढ़ लेता, वो जानता है उसके पास टांगे थी नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकता था खड़ा होके। हसरत हमेशा उस चीज पे होती है जो इंसान कर सकता था वो नहीं किया। जैसे अब एग्जाम में फेल हो गया तो इंसान कहता है हाय अल्लाह काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती, यानी उसको पता है कि वो पढ़ सकती थी, उसके पास चांस था, अकल थी। इसी तरह हसरत उस वक्त इसलिए होगी कि इंसान जानता होगा अच्छी तरह कि उसके पास वक्त था, अपॉर्चुनिटीज थी, सेहत थी, रिसोर्सेस थे, बहुत चांसेस मिले उसको, फिर भी नहीं उसने किया, तब इसलिए हसरत होगी। और अंदाजा कीजिए कि अगर जन्नत वालों को हसरत होगी तो जहन्नुम वालों को कितनी होगी। अगर जन्नत वालों को हसरत हो रही है ना, तो जो कोई थोड़ी देर के लिए भी जहन्नुम में अगर चला जाता है, सारी जिंदगी नहीं भी बात है, थोड़ी देर के लिए भी जन्नत में चला जाता है, उसको भी कितनी हसरत होगी कि मैं बच सकता था, मैंने क्यों नहीं अपने आप को बचाया। इसीलिए तो कुरान में आता है कि इंसान अपने हाथों को चबाएगा, इतना रिग्रेट करेगा ना, इतना अफसोस करेगा, इतनी हसरतें करेगा, काश मेरे और मेरे बुरे साथी के दरमियान मशरक और मगरिब से का फासला हो जाता, काश मेरे और शैतान के दरमियान इतना फासला हो जाता, काश मैं ये ना करता, काश मैं क्यों ये गुनाह में पड़ गया, काश मैं अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेती, मेरे पास इतनी रातें थी, इतने दिन थे, इतनी जिंदगी थी, मैं किधर किधर पड़ी रही। मैं इंसान का दिल करेगा, और पता है एक जगह आता है सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, एक जगह आता है इंसान अपना पूरा बाजू खा लेगा, चबा लेगा, इतनी उसको हसरत होगी। आप खुद सोचे ना, कोई नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे किसी का कोई पैसा कहीं लगाया, सारा पैसा ही डूब गया, वो कहता है हाय मैंने क्यों लगा लिया, मैंने क्यों लगा लिया, वो इंसान अपने हाथ चबाता है, अपनी उंगलियां चबाता है, अपने आप को इतना कहता है मैं अपने आप को मार दूं, ऐसे होता है ना, मैंने क्यों ऐसा कर दिया। ये तो छोटे छोटे नुकसान आते हैं, वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा ली, पूरी जिंदगी उसकी डूब गई, यहाँ पे तो सरमाया डूबने पे ये हाल है ना। यहाँ चलो एक बच्चा कहता है मैं पढ़ सकता था, मैंने क्यों ना पढ़ा, वो उसको दुख होता है कि मैं भी पढ़ लेता, मैं भी आज किसी बड़ी पोस्ट पे होता, किसी उसके ऊपर होता, मैं क्या यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसको अफसोस होता है अपनी जिंदगी। लेकिन चलो इतना भी नहीं होता अफसोस कि अपने आप को ऐसे ही कर ले। इंसान के लिए पैसा बहुत बड़ी अहमियत रखता है ना इस दुनिया में, तो पैसा चला जाए तो उसके ऊपर इतना दुख होता है ना, उसको बाज लोगों को हार्ट अटैक ही हो जाता है, वहां पे हार्ट अटैक तो हो नहीं सकता कि मार ही जाए। तो अब क्या होगा, वो जो हसरत होगी ना, देखिए फिजिकल जो टॉर्चर है वो अलग है वहां पे, लेकिन ये जो मेंटल टॉर्चर है ना, ये हसरतें ही तो इंसान को डिप्रेशन में डालती है। क्यों वहां पे शादी कर ली, मेरे तो और रिश्ते भी आते थे, मैंने क्यों इसके साथ इस आदमी के साथ क्यों कर, हसरत, क्योंकि उसको पता है कि मैं कर सकती थी, हैड अपॉर्चुनिटी, मैंने नहीं की, मैंने सारे रिजेक्ट कर दिए, मैंने इसको क्यों चूज कर लिया। बच्चा आपका, कोई बच्चे को कोई नुकसान हो जाता है, खुदा ना हास्ता, तो आप कहते हैं हाय मैंने बच्चा वहां पे भेजा ही क्यों था, मैं ना ही भेजती, मैं उधर उसको ना ही दाखिल कराती, मैंने आज इसको क्यों भेज दिया स्कूल, मैंने फलां के घर क्यों भेजा। तो ये हसरतें हैं, इस दुनिया में भी हसरत होती है, लेकिन आप कोई मैच नहीं कर सकते उस हसरत के साथ जो आखरत में होगी। अल्लाह अकबर, के आखरत में जब जाके जन्नत वाले भी ये कह रहे हैं हाय, यानी इंसान अगर जन्नत में भी चला जाएगा तब भी उसको होगा, वाकई क्यों ना हो। कुछ सोचिए ना, कितने ही हमारे लम्हात ऐसे नहीं गुजरते जिसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस बैठे बैठे हुए, बस मुंह बंद करके, लेकिन मजाले के जिक्र कर लें, मजाले के कोई अल्लाह की इताअत का काम कर लें, एनर्जी है कुछ भाग दौड़ कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ कोई आ, 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 उसमें नफल पढ़ सकते हैं। दो रातें हैं, कितनी रातें गुजर जाती हैं, 12 12 घंटे कई दफा सोए रहते हैं, 10 10 घंटे सोए रहते हैं, सुस्ती छाई हुई है, बिस्तर से ही नहीं उठ रहे, नमाज भी चली जाती है, नहीं तो उठे तो कोई फर्ज नमाज पढ़ ली, वो भी ऐसे ही पढ़ ली। सारे मोमेंट्स हैं, अपनी जिंदगी को देखें, बहुत बेशुमार बेशुमार मोमेंट्स, बेशुमार चांसेस हमारे आगे बिखरे हुए हैं, यकीन करें हमारे आगे बिखरे हुए, हमें नजर ही नहीं आते। हाँ, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते ना, उठ के किसी को पानी ही दे देना ना, वो भी एक नेकी है। वो मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी, मेरी बला से खुद ही करते रहे। अच्छा बोल बोल देना, मुस्कुरा देना, $1 निकाल के किसी के हाथ में रख देना, नेकियां हैं। लेकिन चांसेस गुजरते जाते हैं, हम देखते जाते हैं कि हमारे सामने से चांसेस गुजर रहे हैं, हम नहीं अवेल करते। बाज नजर आते हैं, हम सुस्ती करते हैं, बाज हमें नजर ही नहीं आते क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हम सीख ही नहीं करते। जो सीख करता है ना चांसेस को, उसको मिल भी जाता है, जो तलाश में रहता है, मुझे कोई, मुझे कोई चांस मिल जाए, मुझे यहां से कोई, यहां से कोई किसी तरह मुझे चांस मिल जाए नेकी करने का, उसको मिल ही जाएगा। लेकिन जो हमारी तरह बस बैठे रहेंगे, उनको क्या दिखाई देगा, बस वो हो और उनकी अपनी जिंदगी, हमें क्या पड़ी हुई, ना किसी के लिए कुछ करना, ना अपना कोई भला करना, अपना ही भला कर ले, ये अपना भला है कि इंसान नेकी कर जाए। तो सोचे, अंदाजा करें, मैं और आप आज यहां पे खड़े होके अपने आप को उधर इमेजिन कर लें, उधर जा तो नहीं हम अभी सकते, लेकिन इधर होते हुए अपने आप को इमेजिन करें कि मुझे ये सारी जिंदगी नजर आ रही है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, अपनी जिंदगी की फिल्म को खुद देखें, आप देखें अपनी जिंदगी जो अभी तक गुजर चुकी है, कितनी रातें, कितने दिन, कितने मोमेंट्स, कितने सेहत के दिन, कितने बीमारी के दिन, कितने फराकी के दिन जिंदगी में आए हैं। कितनी दफा मैं कहती हूँ मैं बहुत बोर हो रही हूं, और फिर मैंने कुछ लगा लिया, कुछ देखना शुरू हो गया, बोरियत बहुत हो रही है। कितने ही दिन मेरे पास ताकत भी, हिम्मत भी, सेहत भी, अकल भी, समझ भी, वक्त भी, सब कुछ, बस मैंने परवाह नहीं की। अभी तक की जिंदगी को भी देख लें, आगे को तो अभी आप छोड़ दें, अभी तक का भी मुहासबा करके देखें, रिग्रेट होता है कि नहीं, खुद को सोचें कि वहां पे जन्नत में नीचे का दर्जा मिल गया और मेरी दोस्त को ऊपर का मिल गया, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा ही तो ज्यादा कर रही थी, लेकिन कर रही थी वो मेरे से ज्यादा, मैं भी तो कर सकती थी, मुझे क्या ऐसी मुसीबत आई हुई थी कि मैंने नहीं किया, तब कितना अफसोस होगा। तो ये हसरतें खत्म नहीं होनी, फिर बहुत हसरत होगी, और खुदा ना हास्ता जहन्नुम का एक डुबकी भी लेनी पड़ गई तो फिर तो हसरत की इंतहा क्या रहेगी। और सबसे ज्यादा तो हसरत तब होगी, इज कुदियल अम्र, जब फैसला कर दिया जाएगा, जन्नती जन्नत में चले गए, जिसने जहन्नुम से निकल के जन्नत में पहुंचना था सब पहुंच गए, और जिसने जहन्नुम में रहना है वो सब जहन्नुम में जल रहे हैं। उस वक्त तो हसरत का अंदाजा ही नहीं कर सकते कि कितनी हसरत होगी। नाउ नो मोर चांसेस, नाउ नो मोर चेंज ऑफ प्लेस, अब ना इनका अजाब कुछ हल्का होगा, ना उनके दर्जे कुछ बुलंद हो सकते, ना इनमें से किसी को निकाला जाएगा ना उनमें से किसी को ऊपर किया जाएगा, तो फिर हजरती होगी, खुद ही अल अमर सब फैसले कर दी जाएंगे, और मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में जिबा कर दिया जाएगा, उस वक्त जो इंसान की हसरत का आलम हो। इसलिए कि फैसला कर दिया गया ना, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर, एक फरीक जन्नत में और एक जहन्नम में। और देखिए ना, अभी जब जन्नती और जहन्नमी अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, तो एक जो इंसान को जब कोई तकलीफ होती है ना, तो एक होप सिर्फ होती है, और वो क्या होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बीमार है भी है ना, बहुत बीमार भी है, उसको भी एक उम्मीद की किरण होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई इंसान किसी भी मुश्किल में है तो कहेगा मुश्किल के वक्त एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन सोचें कि इस वक्त सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए, अब कोई चेंज है ही नहीं, तो ये उम्मीद भी खत्म हो गई। और जब उम्मीद खत्म हो जाए तो फिर क्या रह जाए, हसरत सिर्फ। जन्मियों को हसरत होगी कि काश हम कुछ अच्छा कर ही लेते, ईमान ले आते। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी ने कहा ना कि जो 40 साल की उम्र में भी जाके जिंदगी को वैसे ही देखता है जैसे 20 साल की उम्र में देख रहा था, तो उसने अपनी इतनी जिंदगी जाया कर दी, तो उसको समझ ही नहीं आई। इसलिए कि जितनी इंसान की जिंदगी बढ़े, उसको ये हकीकत समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज नजर आ रही है ना, वो वैसी नहीं है जो नजर आ रही है। ये तो धोखा, ये होना चाहिए कि इस दुनिया की कितनी सुपरफिशियल है, कितनी फेक है, ये समझ आ जानी चाहिए। और हर दिन जैसे जैसे इंसान की जिंदगी बढ़ती हो, ये हकीकत खुलती जाए उसके सामने। लेकिन क्या बात है कि हम डिसेप्शन में रहना चाहते हैं, क्या बात है कि हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हमारी इतनी जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी हम कहते नहीं, जैसे यही रहना है और हम बस यहीं पे यही सारे मजे और यही हकीकत है और ये कुछ नहीं खत्म होना और सब ऐसा ही है। क्यों ऐसे होता है? इसका मतलब हमने जिंदगी जाया कर दी, हमें अभी तक समझ ही ना आई। तो फरीकुन फिल जन्नत ही फरीकुन फिल सईर, जब हो जाएगा ना, फैसले हो जाएंगे, एक फरीक जन्नत में और एक जहन्नुम में, और किसी की गारंटी नहीं है हम में से कि वो कहाँ जाएगा। हम में से कोई भी नहीं अपने बारे में कुछ भी कह सकता, इसलिए कि हमें अपने आखिरी लम्हों का नहीं ना पता कि जब हम दुनिया से जा रहे होंगे तो वो टाइम कैसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, बस इतना कह सकते हैं हम कि अगर हमने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी, तो उम्मीद रख सकते हैं कि खात्मा बिल खैर हो जाए, हमारा ईमान पे खात्मा हो। और हर वक्त हम अगर हम दुआएं करते रहें कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे करना, और डरते रहें कि ईमान कभी भी छिन सकता है, तो अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करना, अल्लाह मेरे ईमान, और कोशिश करते रहे ईमान रोज बरोज मजबूत होता रहे, ताकि जब दुनिया से जाने लगूं तो मजबूत तरीन हो, तब तो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिसको अपने ईमान की फिक्र ना हो, जिसने कभी इसके लिए दुआई ना की हो, किसी की कोशिश ना हो, तो बहुत चांस है कि ईमान पे ना खात्मा हो। तो हमारी पूरी जिंदगी कामयाब रही या फेलियर हो गए, ये फैसला हमारी उस सांस के ऊपर डिपेंड करता है जो हमने इस दुनिया में आखिरी दफा लेनी है, बस उसके ऊपर हमारी इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी डिपेंड करती है। अगर ये सांस हमारे जिस्म से निकला इस हाल में कि हम ईमान पे मजबूत हैं, तो हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, चाहे हमने कितने भी दुख सहे इस दुनिया में। और अगर खुदा ना खास्ता इस हालत में निकले कि हमारा ईमान डगमगा गया था, तो हम नाकाम हो गए, चाहे हम महलों में रहते रहे। तो अंजिर, अल्लाह ताला के अपने नबी को फरमाता है, अंजिर होम, इंतजार कर दे इनको, वार्निंग दे दे इनको, क्या बनेगा तुम्हारा जब यौमुल हसरा होगा, जब फैसला कर दिया जाएगा, फैसला चुका दिया जाएगा, फिर हसरते ही रह जाएंगी, क्योंकि वो मुसीबत कभी ना खत्म होने वाली है। तब कहेंगे, सूरह ज़ुख़रुफ़ में आता है ना, वो कहेंगे ए मालिक, जो जहन्नुम का दारोगा है उसको पुकारेंगे, अल्लाह से कह के हमें मौत ही दे दे, हमसे नहीं जिया जाता, हमें मौत ही दे दे, काश हम मट्टी हो जाते। अब देखेंगे ना, जानवरों के फैसले हो रहे हैं, वो मट्टी हो गए तो कहेंगे काश हम मट्टी ही हो जाते। हसरत कोई एक थोड़ी होगी, बहुत हसरतें होंगी, बहुत हसरतें होंगी। या अल्लाह हमें हसरतों से बचा लेना, हमारी जिंदगी किसी काम आ जाए और हमारी जिंदगी को अल्लाह ताला जाया होने से बचा ले, हमें शऊर दे दे या अल्लाह। हम क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं, हम क्लासों में बैठते हैं कुरान के आगे बैठते हैं, हमें याद रहता फिर भूल जाते हैं। वहम फी गफलत, और वो गफलत में पड़े हुए हैं, वहम ला यूमिनून, वे ईमान नहीं लाते। काफिर तो गफलत में पड़ा ही पड़ा है, आज मुसलमान का भी ये हाल है कि गफलतें गफलतें, गफलतों के पर्दे, नेग्लिजेंस है, गफलत अल्लाह के जिक्र से, गफलत अल्लाह की इताअत से, इस तरफ को आना ही नहीं। और फी गफलतें, फी का मतलब क्या, फी में आप समझ रहे हैं, यानी कि चीज के अंदर होना, गफलत के अंदर यानी डूबे हुए हैं। कह रहे हैं ना गफलत एक नहीं है, बहुत सारी है, सराउंडेड बाय गफलत है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ कर देना, हम कमजोर हैं यार, अब हमें माफ कर दे। इन्ना नहनु नरिथुल अर्ध वमन अलैहा व इलैना युरजाऊन, बेशक हम ही वारिस हैं जमीन के और जो इस पर है, और हमारी तरफ लौटाए जाएंगे, दिल करे या ना करे लौटाए जाओगे। ये नहीं कि हम खुद भाग भाग के लौट रहे होंगे, खुद तो किसी का भी दिल नहीं चाहता लौटने का, जाने का तो किसी का दिल नहीं चाहता, दिल करता है यहीं रहते रहे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है लौटाए जाएंगे, हम ही वारिस हैं, यानी सारा कुछ बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हान, हम ही वारिस है, मतलब जैसे ना, जैसे एक बेटा कहता है मैं ही वारिस हूं, सब कुछ तो मुझे ही मिलना, आज बाप जितना भी पैसा कमा रहा है और इत्मीनान से बेटा कहता मेरा ही है सारा कुछ, अल्लाह ताला फरमाता है हम ही वारिस हैं, यानी जितना कुछ इस जमीन पे, और ये जमीन जिसके पीछे लोग लड़ रहे हैं मर रहे हैं, जायदादों के, ओहदों के, कुर्सियों के, पैसे के, सोने चांदी के खजानों के, प्लॉट घर फलां, इसके पीछे मुकदमे हो रहे हैं, इसका वारिस अल्टीमेटली कौन है? आप छोड़ जाएंगे, आपका बेटा भी छोड़ जाएगा, आपका पोता भी छोड़ जाएगा, वो भी सारे छोड़ छोड़ के जाते जाएंगे, इन द एंड ये सब किसका है? अल्लाह ही को तो है। आज कहते हैं मेरा प्लॉट, मेरे घर के अंदर किसी की जरूरत हो तो आए, मेरी गाड़ी, मेरी ये चीज, मेरी वो चीज, मेरी क्या चीज है रह गई फिर? इन्ना नहनु, कितनी ताकीदें, बेशक हम ही हैं वारिस, तुम किधर से आ गए जो बन बैठे हो कि भाई हाँ मैं मेरी चीज, वो पता भी नहीं चलता। सुभान अल्लाह, इंसान मट्टी के नीचे पड़ा होता, वो मेरी मेरी कर रहा होता ना, वो यही होते हैं हम, जिस घर में, जिस जगह पे हम बैठे हैं, इसमें भी तो कभी कोई रहा होगा, वो भी कहता होगा मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी ये चीज, इधर किधर है वो, अब वो किधर है कहने वाला, मेरी मेरी जमीन के नीचे। 100 साल पहले कौन था इस जगह का मालिक, उस 200 साल पहले कौन था, कोई दुनिया आज से थोड़ी है, हजारों लाखों सालों से जब से चल रही है, कोई ना कोई तो थे ना यहाँ रहते, तो कहाँ गए वो, इससे कोई और बैठा होगा इसी जमीन के ऊपर, इसी जगह के ऊपर, इन्हीं घरों के अंदर, वो कह रहा होगा मेरा मेरा, तो इसका मतलब है तो किसी का भी नहीं, अल्लाह ही वारिस है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो जहां पे भी है, जिन शहरों को हम कहते हैं ना दिस सिटी नेवर स्लीप्स, ये जगह, ये शहर कभी नहीं सोता, ये रोशनियों का शहर, ये फलानों का शहर, एक दिन तो सब जगह खामोशी हो जानी है, चहल पहल खत्म हो जानी, रौनकें खत्म हो जानी, शोर शराबे खत्म हो जाना, सब शहर, सब घर वीरान, सब जगह वीरान। अल्लाह अकबर, और तुम लौटाए जाओगे, उस दिन इंसान कहेगा ना सूरह मोमिनून में, रब्बे इरजिउनी, ऐ मेरे रब मुझे वापस कर दे, मुझे वापस भेज दे, क्यों, मैं अमल, नेक अमल करना चाहता हूँ, ऐ मेरे रब मुझे वापस लौटा दे, मैं तेरी मर्जी से अब जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता नहीं, अब ये तो ये नहीं काम होना, तो योर जाऊं, वो लौटाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला ने हकीकत बता दी इस दुनिया की भी, वो यहाँ पे जब गफलतों के साथ इंसान जिंदगी गुजार दे तो इसकी, कि फिर क्या करोगे इन चीजों के पीछे ही तुम भागे फिर रहे हो, मेरी मेरी करते फिर रहे हो, ये भी मैं अपना बना लूं वो भी अपना बना लूं, क्या तुम्हारा। वकुरफिल किताब इब्राहिम, और इस किताब में जिक्र कीजिए इब्राहिम का। अब मैंने आपको जैसे कि बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 6 पैगंबरों का जिक्र आएगा, उनकी जिंदगियों से बताया जाएगा और रिफ्यूट किया जाएगा, रद्द किया जाएगा उनके जो मुशरिकीन मक्का थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ वही नहीं मानते थे, ईसाई और यहूदी भी मानते थे, सारे ही मानते थे। तो बल्कि अपना कहते थे कि इब्राहिम तो यहूदी है, वो कहते इब्राहिम ईसाई है, वो कहते इब्राहिम तो थे हमारे मजहब के, पर हम इब्राहिम के मजहब के पैरोकार हैं, मुशरिकीन मक्का ही कहते। तो सारे उनको ओन करना चाहते, सब उनको इतना पसंद करते कि बस वो हमारे ही थे। लेकिन इब्राहिम क्या थे वो बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया है, सारे नबियों के बाप, यानी जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए उनकी नस्ल से आए ना, तो उनके बाप हो गए। तो कहा गया इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, वो बहुत सच्चे थे, बहुत सच्चे थे और नबी थे। यानी सिद्दीक मतलब क्या है कि जो कभी झूठ ना बोले और जिसके कॉल और फेल में तजाद ना हो, और वो जो जो कुछ बिलीव करता है ना उसको करके भी दिखाए। ये नहीं कि बातें कुछ हैं और काम कुछ और है, बातें तो बड़े बड़े दावे हैं, हम तो दीन की खातिर ये करते हैं, हम आशिक के रसूल, हम फलां। तो पता नहीं उसके बाद जब बात आए किसी चीज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, उनकी हदीस की, उनके फरमान की, तो कोई पता ही नहीं है। इस दीन के ऊपर मर मिटने वाले हैं, हम तो अपने सर पे कफन बांधे हुए हैं। जब देखे आज दीन के ऊपर मरने वाले तो बहुत है, दीन के पे जीने वाला कोई नहीं है। यानी मरने के तो दावे इतने हैं कि हर कोई तैयार है, मैं मरने को तैयार, मैं मर, तुम जी के तो दिखा दो इस दीन पे, इस दीन पे जीने वाला कोई भी नहीं। तो अल्लाह अकबर, वो ऐसे नहीं थे कि वो बातें करते हों, वो ऐसे थे कि जो वाकई अपनी बात को, अपने जो उनका बिलीफ था, जो उन्होंने एक दफा कह दिया था उसको करके दिखाने वाले। इस कालर रब्बुहु अस्लिम, कला अस्लम तुली रब्बिल आलमीन, जब उसने उसके रब ने उससे कहा मुती हो जाओ, फरमा बरदार हो जाओ, वो फरमा बरदार हो गए। और फिर उनकी पूरी जिंदगी फरमा बरदारी की तस्वीर है कि सिद्दीक है ना, सच कर दिखाया उन्होंने ना, अपनी बात को सच्चा करके दिखाया। ये नहीं कि मैं भी फरमा बरदार, मैं मुसलमान, मुसलमान का मतलब क्या है, मुसलमान का मतलब तो वो ही है ये जो इस्लाम ले आया, जो मती हो गया, जिसने सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद कितने हैं सरेंडर करने वाले, कितने अपने रब के आगे सबमिट करने वाले। फिर जिंदगियां देखो तो बिल्कुल ऑपोजिट, तो ये सच्चाई तो नहीं है, ये सिद्क तो नहीं है। तो वो तो सच्चे थे, वो सच्चे थे, उन्होंने सच कर दिखाया और नबी थे अल्लाह के। और फिर उनकी जिंदगी की बात आती है, इद कौल अली अभी ही, जब उसने कहा अपने बाप से, इनके बाप का नाम आजर आता है। बाज ने, बहुत कम तादाद ऐसी भी है जिन्होंने कहा कि नहीं ये बाप नहीं था ये चचा था ऐसा, हालांकि कुछ नहीं। जब कुराने पाक कहता है कि वो बाप था और उसका नाम आजर था, तो फिर हमें इस चीज के अंदर कोई बहस करने की जरूरत नहीं। लोगों ने कहा नहीं नहीं बाप, चचा को भी बाप कह देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पे भी आप देखें वो या अबती कहते हैं, ऐ मेरे अब्बा जान, बाप को ही पुकार रहे, ठीक है। और आपको पता है कि इनका बाप ना सिर्फ बुतों की पूजा करता था, बल्कि बुत तराश तराश के उनको बेचता भी था, उसका बिजनेस था ये बुतों का, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ना वैसे बहुत सारी एंगल्स कह लिए, बहुत सारी इनकी जिंदगी के वाकयात कुरानी पाक में आए हैं। कहीं सूरज चांद तारों को देखते हैं तो सूरज को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, फिर कहते हैं ये मेरा खुदा है, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर कहीं आग में झोंके जा रहे हैं तो फिर क्या हुआ, फिर कहीं अपने कौम को तबलीग कर रहे हैं कि बुत परस्ती ना करो, तो बुतों को तोड़ दिया था जिन्होंने जाके। फिर सूरज साफात में बेटे को कुर्बान करने का वाक्य आता है, फिर अपनी फैमिली को छोड़ने का वाक्य आता है। मतलब बहुत सारी इनकी जिंदगी के डिफरेंट मकामात, इनकी जिंदगी के हाईलाइट किए हैं कुरान ने। आज आप इनका एक और तरह से इनकी जिंदगी का वाकया, एक और डिफरेंट एंगल से इनकी जिंदगी को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सूरह मरियम के अंदर ना पेरेंट्स और औलाद, इसका बहुत ज्यादा आप देखेंगे, इसके ऊपर बहुत बात देखेंगे। आप देख लें पहले भी यहीया अलैहि सलाम के वालदेन वालिद जकरिया अलैहि सलाम कैसे दुआएं कर रहे हैं और फिर कैसे वो मांग रहे हैं बेटा, यानी उस वक्त से ही एक रिलेशनशिप शुरू हो गया औलाद के साथ। फिर उसके बाद हजरत मरियम के बेटा पैदा हुआ, फिर उनका एक ताल्लुक बताया गया, फिर अब इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने बाप से बात कर रहे हैं और बाप से क्या कहते हैं, या अबती, या अभी भी कह सकते थे, या अबती के अंदर ना उलमा कहते हैं इसके अंदर इतना प्यार है, मोहब्बत है, पोलाइटनेस है, बहुत नरमी, बहुत नरमी, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, यानी वर्ड में भी मोहब्बत है और जो टोन है उसके अंदर भी मोहब्बत है। लीमा ताबुदू मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ। वो अपने बाप से को समझा रहे हैं, आप वालिद को समझा रहे हैं जो बुत परस्त है, और कैसे समझा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग का पॉइंट है। इसलिए ये आपको कह रही हूं क्योंकि जब इंसान दीन की तरफ आता है, या मे बी कोई सिस्टर है जो रिवर्टेड है, अब वो रिवर्टेड सिस्टर जब अपने घर वालों को जो कि अभी इस्लाम नहीं लाए, जब उनसे बात करेंगे तो कैसे करेंगे। इस तरह जब हम अपने घर वालों से बात करेंगे, उनको देखिए एक तबलीग होती है ना, तबलीग सिर्फ गैर मुस्लिमों में नहीं होती, मुसलमानों को भी अल्लाह से करीब करने के लिए, वो मुसलमान जो अपने रब को भूल गया है, जो अपने रब से दूर हो गया है, उसको रब के करीब लाने के लिए भी तबलीग की जाती है। तो कैसे करेंगे, क्या रवैया होगा, किस तरह से कहा जाएगा। तो यहाँ पे जब वो बात करते हैं तो जैसे एड्रेस करते हैं ना, जैसे हम कहें मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, अब्बू जान, प्यारे अब्बू जान, ऐसे करके बात करते ना, वो है इसमें यह आबादी में। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने ये कहा अपने बाप को समझाने के लिए, ये नहीं कहा कि आप तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये आपने क्या शुरू किया है, आपको कुछ समझ भी है, कोई अक्ल भी है, आपको तो समझ ही नहीं आती कि आपने क्या पता है, आपको कुछ कोई पता ही नहीं है आपको। ये जो जैसे आज समझाने के तरीके होते हैं, ये वो तरीका नहीं उन्होंने अपनाया, बल्कि उन्होंने वो दलाइल दिए कि जो इंसान जो, या वो बात की कि जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर दे, जो इंसान को यानी इस चीज की तरफ लेकर आए कि वो गौर व फिक्र करे। ए अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, आप क्यों चीजों को पूछते हैं जो कि ना सुनती हैं, ना देखती हैं, ना वो कोई काम आ सकती हैं आपके। तीन चीजें कही, सुनना, देखना और काम आ जाना, क्योंकि अल्लाह ताला असमी है, अलबसीर है, और वो हमारे काम आने वाला हमारा रब है, वो हमें पालता पोसता है, हमारी सारी जरूरियात पूरी करता है। तो ये तो ना तो सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही किसी चीज के काम, किसी कोई काम बना सकते हैं। और ये बुतों के ऊपर भी पूरी आती है बात, चाहे जिसको भी जो दुनिया से चला गया हो उनके लिए भी यही है, वो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया है कि वो सुन नहीं सकते, तुम्हारी पुकार भी नहीं सुन सकते कयामत तक, ना वो देख सकते, ना वो आपके कोई काम आ सकते हैं, तो अपने भी नहीं काम आ सकते कि अपने लिए दुआएं कर ले, अपने दर्जे और बढ़ा ले, वो तो ये भी नहीं कर सकते, आपके काम कैसे आ सकते। तो वो इतनी प्यारी बात करें। अच्छा, आप एक बात और, ये इसके अंदर कि देखिए इब्राहिम अलैहि सलाम जो थे ना, वो खुद भी सच्चाई के पैरोकार थे और अपने वालिद को भी सच्चाई की तरफ लेकर आ रहे हैं, जो हक है उसकी तरफ लेकर आ रहे हैं, और अपने बाप को, जबकि उनको पता है कि उनका बाप कितना रिजिड है, देखिए जिसका बिजनेस हो ना कोई चीज तो और भी ज्यादा एक चीज हो जाती है कि वो उसके ऊपर पक्का होता है, उसका तो बिजनेस भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं छोड़ो, मैं अपने बाप को क्या बात कहूँ, बाप को तो मैं कहता ही नहीं हूँ, मैं बाहर जाके किसी और को कह देता हूँ, नहीं, अपने बाप से पहले शुरू करते हैं, ठीक है। और आप देखें कि जिसके पे हम ये सोच सकते हैं कि अगर बाप बिगड़ गया तो क्या होगा, अक्सर हमारे यहाँ ये चीज होती है कि अच्छा फिर वो नाराज हो जाएंगे। देखिए दो रवैये होते हैं जब हम अपने बड़ों को देखते हैं ना कोई गलत काम करते हुए। एक रवैया हम ये करते हैं कि हम कुछ कहते ही नहीं है कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अच्छी बनी रहूँ ना अम्मी की नजर में, अब्बू की नजर में, वैसे भी माँ बाप का बहुत एहतराम है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। बस देखते हैं उनको गलत करते हुए, उनको जुल्म करते हुए, उनको ज्यादतियां करते हुए, या उनको शिर्क और बिदतों में मुबतला होते हुए, लेकिन हमने नहीं कुछ कहना क्योंकि हम प्यारी बेटी बने रहे हैं। और दूसरा रवैया क्या होता है कि उस चीज को बदतमीजी से हैंडल करते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, रूड होने लगते हैं उनसे, उनको बुरा भला कहना, डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या पता है, आपको कोई पता तो है नहीं, ऐसी बातें करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रवैयों में ऐसा कुछ भी नहीं। ना तो उन्होंने बाप को ऐसे छोड़ दिया कि मुझे क्या इसकी, ना उन्होंने ये किया कि कोई बदतमीजी कर रहा है। और आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल इसलिए हमारे लिए है कि हम बहुत जल्दी ये चीज को सोच लेते हैं कि नहीं हमारे वालदेन ने तो हमारे साथ इतनी ज्यादतियां की हैं, मैं उनके साथ कैसे अच्छा कर सकती हूँ, मैं उनके साथ कैसे अच्छी तरह बात करूं, वो तो मुझे ये कहते हैं वो कहते हैं। अब देखें बाज दफा इंसान दीन की तरफ आता है ना, नया नया आता है तो उसके अंदर जोश भी बड़ा जज्बा भी होता है, और वालदेन दीन की तरफ अगर नहीं है तो वो कुछ बुरा भला भी कहते हैं, कुछ सुना भी देते हैं, तुम क्या बन गई हो, मुल्लानी बन गई हो, पता नहीं तुम कौन सी क्लासे लेने शुरू हो गई हो, पता नहीं तुम किधर तरफ लग गई हो, इस तरह की बातें सुनाते हैं। चलो वालदेन ना सुनाए, शोहर सुनाने शुरू कर देते हैं, क्या बच्चे कहना शुरू कर देते। अब एक बंदा इन सारों के बीच में घिर जाता है ना जब, तो वो सोचता है अच्छा चलो जब मैं सब चीजें ही छोड़ देती हूँ। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा नहीं किया। फिर दूसरी, जब तबलीग करने का मामला आए तो इंसान अपने ना करीबी जो लोग होते हैं उनसे हर्ट भी बहुत होता है, तो बाज दफा उसके रवैयों के अंदर, चूंकि वो हर्ट हो रहा था क्योंकि वो तो बुरा भला कहते हैं, तो रवैये के अंदर ये आने लगता है, वो इंसान ऊंचा बोलना शुरू जाता है, कहता है मैं क्या करूं, ये खुद ही ऐसे करते हैं तो मैं क्या करूं, इन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। नहीं, तब भी ये नहीं करना। आप देखेंगे इनके बाप ने कैसे इनके साथ किया, अभी आगे आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने जो करीबी रिश्तेदार थे ना उनसे बहुत हर्टफुल चीजें देखने का सामना, जैसे अबू लहब चचा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले तो थे नहीं, चचा ही बाप की जगह होता है फिर, और वो खड़ा हो गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इतना इस हद तक खड़ा हो गया था कि जहां आप जाते थे ना बस पीछे पीछे फॉलो ही करता रहता था, और लोगों को कहता था लोगों सुनो ये मेरा पागल भतीजा है, नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, इसकी बात ना सुनना, सिर्फ इंतहा, यानी अगर नहीं मान लाना तुम ना लाओ, तुम अपने घर में बैठो। वो तो इस हद तक पीछे पड़ गया था कि वो लोगों के मजमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से तहकीर करता था, ऐसे बेइज्जत करने की कोशिश करता था। तो सोचिए जरा इंसान का दिल कितना बुरा होता है कि ये तो मेरी अपनी है, इसका गम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वाकई होता है। तो आप में से अगर कोई अपने घर वालों की वजह से सताया जा रहा हो, या वो आपके पीछे पड़ गए हैं, या वो जब से आपने बस पढ़ना शुरू किया है वो आपके साथ उनके रवैये सर्द हो गए हैं, या बुरा भला कहते हैं, या बातें बनाते हैं, ताने देते हैं, तो इन नबियों की एग्जाम्पल्स को अपने सामने रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्हीं के जरिए तसल्ली दी जा रही है, ये देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। और ये ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए और सहाबा के लिए, हम सब के लिए जो भी दीन की तरफ आता है और वो इस वजह से सताया जाता है अपने प्यारों के हाथों, उसके लिए इसमें एग्जाम्पल है, उसके लिए इसमें तसल्ली है। देखो फिर हौसले, बड़े लोगों के हौसले भी कितने होते हैं कि ऐसा बाप जो इतना उम्र को जाके भी, इतना जाहिर है कितना बड़ा होगा, तब भी उसको समझ नहीं आई, और ये नौजवान लड़के हैं अभी, और फिर भी जबकि नौजवानों के अंदर ज्यादा इजाज़त, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी उनके अंदर खून उनका खोलने लगता है और एकदम भड़कना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह आबादी, फिर कहते हैं यह आबादी। देखिए बार बार आप देखेंगे 4 दफा इन्होंने यहाँ पे यह आबादी कह के अपने बाप को पुकारा है, मेरे अब्बा जान, या अभी भी नहीं, या अबती, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, इन्नी कद जानी मिनल इल्म, मुझे मेरे पास ना कुछ इल्म आया है, मिनल इल्म है, ये नहीं कि मुझे सारा इल्म मिल गया, मुझे सारा पता है आपको क्या पता, नहीं मुझे इल्म में से ना कुछ, ये उनकी आजिजी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कुछ इल्म मुझे मिला है मालूम ये अतीका, जो आपको नहीं आपको वो वाली चीज नहीं पता जो मुझे पता चली है, फत्तबियानी बस मेरी पैरवी करें, मुझे फॉलो करें, अहदी का सिरात उस सवैया मैं आपको पहुंचा दूंगा सीधे रास्ते पर, उसकी रहनुमाई कर दूंगा आपके लिए। इतना मोहब्बत भरा अंदाज, इतना खलूस, याद रखे जब आपने किसी को दावत देनी हो तो कभी भी दावत आपकी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती जब तक आपके अंदर खलूस ना हो। इंतहाई शफकत, इंतहाई खैरख्वाही दूसरे के लिए ना हो तब तक नहीं हो, बहुत हमदर्दी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं इसकी हमदर्द हूं, तब तब हो सकता है। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा मैंने तो पैगाम पहुंचाना है, मेरी बला से समझ आए ना आए मेरा काम था आपको बता देना, तो अब आप भाड़ में जाए चाहे जहन्नुम में जाए मुझे क्या, ये फिर आपकी कभी भी नहीं इफेक्टिव हो सकती तबलीग। तो ये नहीं कह रहे क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने ये किया, नहीं इतनी आपको आज तक समझ ही नहीं आई इस बात की, ये भी नहीं कहा, पहले सोचने पे मजबूर किया और फिर भी उसके बाद जब कह रहे मेरे पास कुछ इल्म आया है तो हाकिमाना अंदाज नहीं है कि मेरे जो सारी समझ आ गई नहीं, या अब ही क्या क्या के बता रहे हैं कि आपका मकाम अपनी जगह है, आप फिर भी काबिले एहतराम ही हैं, आप मेरे बाप ही हैं, मैं आपका बाप नहीं बन गया इल्म आने के बाद, समझ आए। आज तो हमें जब कोई बात समझ आ जाए तो हम कहते हैं कि बबे, या आज के बच्चे कहते हैं कि मैं बाप हूं आप तो, या मैं माँ हूं आप मेरी माँ नहीं, मैं माँ हूं। तो ये बड़ा तरीका हमें समझ आता है इन बातों से। तो वही वो जो किसी की हेल्प ही ना कर सके, जो खुद मोहताज हो, उस उसकी इबादत करने का क्या फायदा, उसकी क्यों इबादत करनी। और ये बड़ी अच्छी अप्रोच से वो बता रहे हैं, इसलिए कि वो वालदैन जिनके अंदर ना अभी अल्लाह की मोहब्बत ना रसूल की मोहब्बत ना अभी उनको कोई पता है कि अल्लाह का पैगाम क्या है, उनको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, उनको बिल्कुल सिंपल वर्ड में देखिए, अगर आप क्रिटिसाइज करके फिर आप उनको बताएंगे ना तो वो बात नहीं असर करेगी। अगर आप ये कहते हैं अम्मी आप क्या हर वक्त बस ड्रामे देखती रहती हैं, हर वक्त फोन पे लगी रहती हैं, आपको तो बस यही है, कुछ पता है आपको कि क्यामत आने वाली, आज हमने ये पढ़ा है आज हमने वो सुनेंगी आपकी बात, और ये क्या आप बिद्दतों में पढ़ी हुई है, ये हराम है, ये हराम है, फलान चीज हराम है, अब कुरान तो आपने पढ़ा लेके सारा आप लोड अपने उनके ऊपर डाल दें जिनको अभी समझ ही कुछ नहीं, चाहे वालदे ने चाहे शौहर है आपके, आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो ऐसे नहीं, आपको तो कुछ समझ ही नहीं, इस तरह से नहीं होगा। आप बहुत मोहब्बत यानी एक्स्ट्रा मोहब्बत दिखानी पड़ेगी तबलीग करने के लिए, चले चाहे आगे पीछे आप उतनी मोहब्बत से नहीं भी पेश आते, लेकिन जब आपने अल्लाह की बात करनी है तो फिर इंतहाई ज्यादा आपने नरमी शफकत मोहब्बत का इजहार और आपकी बातों में और आपके अंदाज में वो सब झलकना चाहिए। हम कहते हैं ना किस तरह बताएं बच्चों को, किस तरह, इस तरह ही बताएं बस, और बताते ही रहें बस, फिर अल्लाह से दुआ कर, इतना ही प्यार। और यहाँ पे देखें जो हमें पता चलता है एक नबी होके भी अपने बाप के साथ देखें कितनी आजी है, जिस तरह कितना इतराम है, हालांकि खुद का दर्जा कितना बुलंद है वो तो काफिर है, फिर भी दर्जे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुकाम में मर्तबे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, लेकिन एहतराम बाप का इसलिए कि बाप एहतराम के काबिल है, क्योंकि वो बाप है, इसलिए नहीं उसका एहतराम करे कि वो काफिर है, बल्कि वो बाप है, उसका बाप होना ही इस काबिल है कि उसका एहतराम किया जाए, चाहे वो किसी भी कुफर में या शिर्क में या किसी में भी। अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे वालदैन इसमें नहीं है, जिनके वालदैन हैं कुफर के अंदर वो भी यही रवैया, और जिनके वालदैन नहीं है कुफर के अंदर, तो वो कैसे फिर उनसे ऐसी बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा था, तो फरमाया था कि मूसा नरमी से बात करना फिरौन के पास। हम बच्चों को बेइज्जत करते हैं सारों के सामने, उनको बदतमीज बदतहजीब कहते हैं, फिर उनको इस तरह जलील करके फिर उसके बाद सोचते हैं अब ये हमारी बात मानेंगे और हम इनको कहेंगे कि आप देखो दीन पढ़ो और इस तरह, और तुम्हें नहीं समझ के दीन की तरफ आना है और तुम्हें नहीं पता कि नमाज पढ़नी, तो वो फिर फौरन खड़े हो जाएंगे पढ़ने। ऐसे नहीं होता। इमाम शाफी कहते हैं कि अगर तुम मेरी इसलाह करना चाहते हो तो मुझे अलग से ले जाके बताओ, और फिर चाहे सुबह से शाम तक मुझे नसीहत करते रहो मैं सुनूंगा, मगर मुझे लोगों में नसीहत ना करना, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि फिर वो नसीहत है या मेरी जिल्लत तुम करने की कोशिश कर रहे हो। और बाज दफा ऐसा होता है इंसान शुरू तो करता है बड़ा पोलाइटली शुरू करता है, उसके बाद आवाजें ऊंची होने शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां से वो कुछ बोलते हैं, फिर आप कुछ बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं, और इन द एंड चीखना चिल्लाना और झगड़ा, और फिर झुंझलाते हुए पैर मारते हुए निकल जाते हैं कि अब से नहीं मैंने बताना और बहुत मैंने सबर कर लिया और मैंने बस बात ही नहीं करनी है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये बड़ी सबर मांगती हैं, बहुत सबर मांगती हैं, जज्बाती होने से भी नहीं ये काम चलता। वो अपने आप को पहले बहुत कंपोज करके बहुत सोच के फिर बात करनी चाहिए कि मैंने जज्बाती नहीं होना बस। अल्लाह अकबर। या अबती ला ताबुद शैतान, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ प्यारे अब्बा जान, शैतान के पीछे ना जाए आप। इन्ना शैतान का नले रहमान यासिया, शैतान तो जो है वो रहमान का नाफरमान है, यानी अल्लाह ताला का तारुफ अल्लाह नहीं कह के रहमान कह के कराया। रहमान जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला, एग्जेजुरेशन है इसके अंदर, तो शैतान को तो चाहिए था रहमान को कभी नाराज ही ना करता, क्योंकि वो रहमान है, रहमान को कौन नाराज कर सकता। देखिए जो इंतहाई रहम करने वाला, एक कह दिया जाए अल्लाह है वो आपका पैदा करने वाला, फिर भी ठीक है लेकिन इतना नहीं होता, लेकिन जब कह दिया जाए ना कि इतना रहम करने वाला कि उसके रहम की कोई इंतहा नहीं, उस रहम करने वाले का रहम सुन के ही ना इंसान के दिल में उसके लिए एक जगह पैदा हो जाती, उसका नाफरमान, उसकी तो नहीं नाफरमानी करनी चाहिए जो आपके ऊपर इतना मेहरबान हो जाए, जो इतना रहम करने वाला। तो बेपनाह रहम करने वाले का नाफरमान कोई कैसे हो सकता है, लेकिन शैतान ने तो इतनी हद कर दी कि रहम करने वाले का भी नाफरमान बन गया। और आप देखिए इस सूरत के अंदर रहमत से सूरत शुरू हुई थी ना, और इसमें रहमान का बहुत जिक्र है, बहुत दफा अल्लाह ताला का ये नाम आएगा। और शैतान की इबादत तो कोई भी नहीं करता, कौन शैतान को, खैर आज तो अल्लाह माफ करे शैतान की भी इबादत लोगों ने शुरू कर दी, इतना ही इनका दिमाग फिर गया। पुराने लोगों को तो कहते हैं कि वो, उनको तो कोई समझ ही नहीं थी, हम तो 21st सेंचुरी के पता नहीं कौन से लोग आ गए हैं जो कि कितने चांद पे पहुंच गए और दुनिया हमने फतह कर ली और हमने फोन बना लिया तो हम पता नहीं क्या बन गए, लेकिन अकल इस कदर गिर गई है कि शैतान की भी आज पूजा शुरू हो गई जो कभी नहीं हुई थी। और यहाँ पे जो वो कह रहे हैं ला ला ताबुद शैतान, तो ये शैतान की पूजा ना करें, वो शैतान की तो नहीं पूजा करता था आजर, फिर क्यों कह रहे हैं। असल में बुत परस्ती भी तो शैतान की पूजा ही है ना, इसलिए कि जब शैतान के रास्ते पे चलेंगे अल्लाह के रास्ते को छोड़ के, जब शैतान की बात मानेंगे तो उसकी पूजा ही है, जिसकी इताअत करेंगे वही उसकी इबादत है। अगर कोई शैतान की इताअत करता है तो वो उसकी इबादत कर रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो हो ही रही है लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत ज्यादा इबादत हो रही है शैतान की, उसको ही खुदा बना लिया। हम कहते हैं ना तुमने तो पैसे को खुदा बना लिया अपना, तो क्या मतलब है, हर वक्त पैसे के पीछे, हर वक्त पैसे के पीछे सब चीज अपनी जिंदगी लगा दी उसके पीछे। तो जो शैतान को अपना खुदा बना लेता है, यानी उसकी बात मान रहा है, उसके ही रास्ते पे चल रहा तो, या अबती इन्नी अखौफू, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, मुझे तो डर लगता है किस बात का, यमस्सक अज़ाबु मिन रहमान, कि आपको छू जाए जरा सा भी, आपको टच भी कर ले अज़ाब रहमान की तरफ से, फतकून लिश्शैतानी वलिया, तो आप हो जाएंगे शैतान के साथी मददगार, उसके वली हो जाएंगे, उसके साथी बन जाएंगे। मुझे ये डर लगता है कहीं आपको अजाब ना आपके ऊपर आ जाए। यानी अब अजाब से भी डरा दिया, क्योंकि ये रास्ता अजाब की तरफ लेके जाता है, और रहमान की तरफ से, यानी अल्लाह ताला तो रहमान ही है, वो तो रहम करना चाहता है, तो बड़ा रहम करने वाला है वो, तो यानी रहमान से आपको क्या आता है दिल में? बहुत मोहब्बत, बहुत शफकत, बहुत रहम। कितने अच्छी फीलिंग होती ना अल्लाह ताला का ये नाम सुन के भी। इसलिए सूरह रहमान जो है वो इंसान को सूद करती है, वो बड़ी ऐसे लगता है कि अंदर सुकून आ गया। रहमत की बात है ना, रहमत का सुनते ही इंसान के अंदर ऐसा फीलिंग आती है ना। तो अल्लाह ताला का ये नाम उन्होंने लिया कि वो तो रहमान है, लेकिन कहीं हम ऐसे काम ना आप कर देंगे वो रहमान अजाब देने वाला बन जाए, वो अजाब दे। हालांकि अजाब और रहमान दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि अजाब, किसी किस्म का भी अजाब, वो रहमान अजाब नहीं देना चाहता, वो तो रहमत करना चाहता है, लेकिन वो अजाब देने पे आ जाए। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है रहमान बता के कि वो फिर भी रहमत करने वाला ही है, तो उसकी तरफ पलट आए, वो तो फिर भी केयरिंग ही है। रहमत उसी की तरफ से होती है ना, जो केयरिंग हो, जो लविंग हो, जो खैर चाहता हो। अब देखें आप, सुभान अल्लाह, जो बाप है, बाप बात करता है, तो जरा बाप की भी बात जरा सुन ले। एक बात को याद रखिएगा, हमारे लिए सबक इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात में तो है ही है कि बेटा कैसा होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए सबक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप में भी है। हमारे लिए सबक यानी वो बंदा जो कि वो ऐसा इंसान है कि जिसने वो रवैया इख्तियार किया कि जो हमें नहीं करना, हमारे लिए इस बात के अंदर भी एक लेसन है कैसे हमने औलाद के साथ पेश नहीं आना। कौला, उसने कहा, अब देखें बाप, वो कहते हैं या अबती या अबती, तो बाप ये नहीं कहता या बुनैया या बुनैया, जैसे जैसे लुकमान अलैहि सलाम कहते हैं, जैसे और पैगंबर अपने याकूब अलैहि सलाम कहते हैं अपने बच्चों को, और पैगंबरों की बातें आती हैं, तो कितने प्यार से वो अपने बच्चों के साथ कलाम करते हैं। वो कहता है अरागिब, क्या तू फिरने वाला है, अंता तू अन आलिहती या इब्राहिम, मेरे इलाहों से है इब्राहिम, अभी भी इब्राहिम कहा, अभी भी या बुनैया नहीं कहा। सुभान अल्लाह, यानी क्या तू उनसे फिरेगा इब्राहिम, ल इल्लम तंतही, अगर तू बाज ना आया ना, ला अर्जुमन्नकुम, अलबत्ता मैं जरूर तुझे संसार कर कर दूं, पत्थर मार मार के मैं तुझे जान से मार दूंगा, अपने हाथों से तुझे मुझे मार दूंगा। अब कितना हार्श टोन है ना, लेकिन आपको पता है हम भी कई दफा ऐसी हार्श टोन अपनाते हैं अपने बच्चों के साथ, जब हम कहते हैं मैं देखो मैं तुम्हें सर तोड़ दूंगी तुम्हारा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ऐसे कहते हैं जान से मार दूंगी तुम्हें जब बहुत ही गुस्सा आए तो। ये किसकी एग्जाम्पल है जो हम फॉलो कर रहे हैं? किसी एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी, ये किसकी एग्जाम्पल है? अब करना तो नहीं होता, लेकिन ये एग्जाम्पल किसकी है ये बताएं, ये अखलाक किसका है, ये जुमला किसका है, उसका आजर का? क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा? क्या लुकमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा? क्या दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से बात की तो ऐसे कहा? नहीं, हम कहते हैं उनके तो जो है ना बच्चे इतने नेक थे, तो हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से इतने प्यार से बात करें, उनके कौन सा बाप बहुत कोई नेक आदमी था। वहजुरनी मलिया, और छोड़ दो मुझको एक लंबी मुद्दत तक, मली यानी मतलब अरसा दराज था, यानी जिसको हम बड़े बुरे उसके अंदर रहते ना, दफा हो जाओ मेरे सामने से, और मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना आप। वो इस तरह से कह रहा है। अब उसने ये बात की तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में पैर पटकते चले जाते या दरवाजे मारते चले जाते, लेकिन नहीं, कला सलाम अलैक, फरमाया सलाम हो आपके ऊपर। अब ये सलाम वो भी है जो कि मैं मतलब मैं जा रहा हूँ, अच्छा सलाम अलैकुम जैसे हम कहते हैं, कोई खुदाफिस कर रहे होते हैं ना तो हम सलाम करके जाते हैं, वो भी है ये हो सकता। और आपके ऊपर सलामती हो, ये एक दुआ भी हो सकती, सलामती की दुआ। वो क्या कह रहा है, और ये देखें आगे से उनका कुछ भी नहीं बदला कि वो कुछ आगे से कोई हार्श बात ही कह दे, या अच्छा तुम फिर भाड़ में जाओ, तुम अच्छा फिर तुम जहन्नुम में जलोगे, जलते रहना भी जहन्नुम में, फिर याद करना, या फिर इतना ही कह देते अच्छा मेरा काम तो तब बता देना, मुझे नहीं है परवाह, जो मर्जी हो, कुछ भी नहीं ऐसा। इससे पता चलता है कि ये जो नबियों का काम है ना, तबलीग का काम, ये बड़ा ही सबर आजमा काम है, बड़ा ही सबर वाला काम है। चाहे आप घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, फिर भी सबर वाला तो वहां पे भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हम इतनी उस एक्सटेंट पे जाते ही नहीं है कि हम किसी को जाके कहें। कभी कभार कह दिया, वो भी वहां जहां हमें लग रहा हो कि अच्छा ये कोई बात सुन ही लेगा, तो उसको एक कार्ड पकड़ा दिया या एक फ्लायर दे दिया, तो चलो उसमें वो क्या कह देगा, जरा सी भी वो बात सुना दे, जरा सा भी कह दे हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, तो हमें बुरा लगता है कि भाई ये क्यों कह दिया। लेकिन अक्सर हमें बाहर वालों से ज्यादा घर में इस किस्म के बातों को का सामना करना पड़ता है, कभी रिश्तेदारों से, या कभी अपने बच्चों से, या शोहर से, या वालदेन से, या इस तरह के करीबी रिश्तों से। यहाँ पे हम वाकई सच्ची खैर ख्वाही से वाकई बताना चाह रहे होते हैं, लेकिन आगे से जब हमें ऐसी सख्त बात और इतनी तुर्श बात सुनने को मिलती है, फिर हम अपना टेम्पर ही लूज कर देते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहां से पता चलता है कि जब उनकी नेगेटिव भी बात हो तो तब भी नहीं गुस्सा करना, तब भी अपने आप को ना अंदर से कंट्रोल करना है कि नहीं मैंने कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी। अल्लाह अकबर। हालांकि देखिए आप, जब औलाद जवान हो जाती है तो वालदेन खुद ही डरने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं हम इसको ज्यादा कुछ कहें नहीं, लेकिन ये कैसा बाप था, उसने नहीं परवाह की इस बात की, उसने कहा चले जाओ मेरे सामने से। तो अब वो सलाम करते हैं, अब ये इसके अंदर एक क्वेश्चन, एक भी कोई मसला आ जाता है कि क्या हम गैर मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं। तो सलाम उस तरह से ग्रीट तो कर सकते हैं आप, लेकिन हमारा जो सलाम है ना हमारी शरीयत में, वो उसमें पहल नहीं करनी गैर मुस्लिमों के लिए कि आपको गैर मुस्लिम मिले तो आप उसको सलाम वालेकुम कह रहे हैं। आप उनको गुड मॉर्निंग कह दें, हेलो हाय कह दें, तो वो तो कह सकते हैं, लेकिन अपना जो, क्योंकि हमारा सलाम एक दुआ है, तो ये खास इस्लामिक ग्रीटिंग है, ठीक है। तो उनको अगर वो सलाम करें आपको तो फिर वालेकुम कह दें। और फिर कहा अस्तग़फिरुलक रब्बी, मैं आपके लिए इस्तग़फार करूंगा अपने रब से, मैं आपके लिए इस्तग़फार मांगूंगा कि अल्लाह आपको बख्श दे, इन्नका नबी हफिया, बेशक वो यानी अल्लाह ताला मेरे साथ बड़ा मेहरबान है, जो बार 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 मुड़ मुड़ के आता है ना किसी की तरफ, वो होता है, तो वो मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है, मैं आपके लिए इस्तग़फार करूंगा। तब भी ये नहीं कि जो है ना, अब आपने ये कह दिया है ना और आप देखना आपके साथ क्या होता है, तो तब भी कि मैं आपके लिए बख्शिश चाहूंगा। और आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए इतनी दुआएं की और करते रहे इस बात की वजह से कि वो कह चुके थे कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, इसलिए वो उनके लिए दुआएं हमेशा करते रहे। हम देखें ये जो हम अपनी नमाज में दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बे जालनी वाली, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, तो उसमें है रब्बना उफिर ली वली वाली दैया वलिल मोमिनीना यौमा यकुमुल हिसाब, एंड में है, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांगते थे, यानी जब वो हिजरत करके चले भी गए, ये मस्जिद उल हराम बना भी दी, आपके यहाँ औलाद भी हो जाने के बाद आप कहते रहते थे यही वाली बात, फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने जब वही की ना कि इब्राहिम, आप मुशरिकों के लिए इस्तगफार नहीं कर सकते, और आपका बाप तो मुशरिक था और वो शिर्क के ऊपर ही वो मर गया, तो आप नहीं कर सकते उनके लिए दुआ, तब हटे थे। तो उन्होंने ऐसे नहीं किया, अभी कह दिया उसके बाद याद ही नहीं है किसके लिए दुआ करनी, और वो फिर उसके बाद इतनी इल फीलिंग्स दिल के अंदर हों के उसने तो मुझे उस वक्त ये कहा था, मैं क्यों उसके लिए दुआ करूं। हम तो दिल में रख लेते हैं ना ग्रज, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम, मैंने नहीं उसके लिए दुआ करनी, उसने फलाने वक्त में मुझे ऐसे कहा। लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, फिर भी वो दुआएं करते ही रहे, सिर्फ कहा नहीं, देखिए सच्चे थे ना सिद्दीकन, तो जब कहा तो की भी दुआ, तो हम कह के फिर उसके बाद अच्छा हाँ मैं दुआ करूंगी उसके बाद, पता ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वआतज़िलुकुम, और मैं छोड़ता हूँ आपको, वमा तदाउन मिन दूनिल्लाह, और जिनको आप पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, अपने बाप को आप जाते हुए क्या कह रहे हैं, मैं आपको भी छोड़ रहा हूँ। कुम से मतलब तो का नहीं कहा, कुम कुम मतलब सब कोई, जितने रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, फैमिली अपनी सारी, और पूरा अपना इलाका, और ये माशरा, ये कम्युनिटी सारी, सब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जिनकी आप इबादत करते हैं मैं उनको भी छोड़ के जा रहा हूँ। ये तब हो गया था जब उन्होंने आग में डाल दिया था, और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वो वहां से चले जाते। और देख लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप से ज्यादा सख्त कोई बाप नहीं हो सकता। यानी ये सिर्फ उसने कहा नहीं था कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा, ये किसका बाप ऐसे हो सकता है कि खुद अंदाजा कीजिए कि खुद लकड़ियां ला के आग लगाने में पेश पेश होना कि इसमें मेरे बेटे को जलाया जाए। ठीक है दूसरी दुनिया पूरी कौम कबीला उनका कर ही रहा था, मगर एक बाप का करना अंदाजा कर सकते हैं कि इंसान, और इन्होंने देखा था, ये नहीं कि ये बस बात करके अब चले गए, इतनी भी बात नहीं खत्म हुई थी, ये जाने से पहले इनको उस आग में डाला गया था। ये तो बिल्कुल एंड है ना कि वो जा रहे हैं आप छोड़ के, और उन्होंने देखा कि मेरा बाप उठा उठा के लकड़ियां मेरे लिए जलाने के लिए ला रहा है, और वो नहीं कह रहा कि मेरे बेटे को ना जलाओ, इसको माफ कर दो, इसको चाहे, देखिए अबू तालिब ने जितना भी मतलब कहें कि वो ईमान नहीं लेकर आए थे, उन्होंने नहीं आप सरसरम की रिसालत को माना था, मुखालफत नहीं कभी की थी, वो भी तो एक चच्चा थे ना, और ये बाप होके कैसा था। अब मुझे बताएं, हमारे में से किसी के वालदैन ऐसे नहीं है, चाहे किसी के काफिर भी वालदैन है वो ऐसे नहीं, इससे बड़ी ज्यादा एक्सट्रीम बात क्या हो सकती। फिर भी उन्होंने बाप के साथ तो बदतमीजी नहीं, बल्कि दुआ करूंगा मैं आपके लिए, मैं जा रहा हूं आप लोगों को छोड़ के, कुछ उसके अंदर भी कुछ नहीं, बुरा भला कहना, कोई उनको दुआएं देना, कोई उनको ऐसी करना, उनमें से कोई चीज भी नहीं है। फिर हम कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ, हमारे पास कहाँ से अथॉरिटी हमें मिल जाती है कि चूंकि मैंने पढ़ लिया और आपने तो पढ़ा नहीं है, तो अब मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपको बेइज्जत भी करूं, जलील भी करूं, सबके सामने आपको बुरा भला भी कहूं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हस्बैंड हैं, चाहे वो सिर्फ वालदैन की बात ना सोचे ना, आप ये भी सोच लें ना कि चलो आप वालदैन के घर से रुख्सत होके आ गई, आप कोई और होंगे जो मुखालफत करते होंगे, इस तरह के तो कोई भी नहीं होगा ना। जब ऐसे रवैये के साथ भी उन्होंने अपना अखलाक, नरमी और हमदर्दी का मामला नहीं छोड़ा, तो हम फिर कैसे छोड़ सकते। हम तो सारी जिंदगी इस चीज को ना भूलें कि मेरे तो लोग तो अपने माँ बाप की शिकायतें बचपन की पाल के बैठे होते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, वो हमें कभी सैर पे नहीं लेके जाते थे, हमें ये नहीं देते थे, हमें वो नहीं करते थे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आग में डालने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, वाकई फिर पता चलता है ना कि हम क्या चीज हैं और वो लोग क्या चीज थे, पता चलता है ना। हम मांगते तो हैं बहुत ऊंचे दर्जे, और मांगते तो हैं कि याला इनका साथ हमें देना जन्नतों में, इन अंबिया का, सालेहीन का, सहाबा का, इन वाले दर्जे देना, जन्नत अलफिरदौस देना, लेकिन जब मैं ये सारा कुछ पढ़ती हूँ सोचती हूँ कि हमारे हौसले तो बहुत थोड़े हैं, हम तो बहुत जल्दी तंग पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी आजिज आ जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हम फेड अप हो जाते हैं, अपना टेंपर लूज कर देते हैं, सब्र का दामन छोड़ देते हैं, हमारे अंदर वो पेशेंस ही नहीं, वो हौसले ही नहीं, क्या हम किसी को तबलीग करेंगे। 2 दिन बच्चों को नमाज का भी कह देना, हम तो तीसरे दिन हमारे मुंह में गुस्सा आने शुरू जाता है। आसा अल्लाह कुना भी तो आए रब्बी शकिया, उम्मीद है मुझे कि मैं आऊंगा अपने रब को पुकार कर, कभी ना मुराद नहीं होऊंगा मैं अपने रब को पुकारने पे। ये यहाँ पे कहा जाता है कि आसा का मतलब यकीन का, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए मुतालिक है तो इसलिए यकीन का माना है। बास कहते नहीं, उम्मीद का ही माना है कि वो इसमें उनकी आजी है कि वो उम्मीद रख रहे हैं, ये नहीं कि मुझे यकीन है। लेकिन दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये यकीन के साथ उन्होंने कहा कि मैंने अपने रब को पुकार के कभी ना उम्मीद नहीं हुआ, मुझे यकीन है मेरा रब जो है ना मुझे कभी ना उम्मीद नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा, मुझे महरूम नहीं रखेगा। तो यकीन होना चाहिए कि मेरी दुआ सुनी जाएगी, मेरा रब मेरी दुआ रद्द नहीं करने वाला, वो मुझे मायूस नहीं करेगा, ये यकीन होना चाहिए इंसान को। तो ये कह के वो निकल गए, ठीक है। अब क्या यादें लेके निकले हैं अपनी जगह की, क्या उन लोगों ने इनके साथ किया है, ये सब करके जुदा होगा।